सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे श्वेता और आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली रेडियो 89.6 एफएम। ये है गोंडास शहर की धड़कन। सो हमेशा की तरह दोस्तों, आज भी स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान है साथ। जी हाँ, मेहमान का नाम हम बताते हैं और बाकी सारी बातें, ढेर सारी बातें, बहुत ही ज्यादा बातें हैं जो आज तो नहीं खत्म हो सकती, लेकिन कोशिश करेंगे ढेरों से ढेरों जानकारी हम लेने की। सो मोस्ट वेलकम करते हैं अपनी मैम का, जिनका नाम है डॉक्टर रोमा अरोरा मैम। सो मोस्ट 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 वेलकम मैम, कैसी हैं आप?
मैम बहुत अच्छी हूँ श्वेता जी, थैंक यू सो मच।
और आप आई मैम, बहुत अच्छा लगा है, और इतना अच्छा लगा है कि बात ढेर सारी करनी है, देखते हैं स्टार्ट कहाँ से करते हैं।
मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ आज। मैं आज आपने मौका दिया मुझे यहाँ पे आने का और आपके साथ बातचीत करने का, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी। थैंक यू सो मच।
थैंक यू मैम। आपका हम पूरा नाम जानना चाहेंगे, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, एंड जैसा कि डॉक्टर मैंने अभी बोला है तो किस डिपार्टमेंट से हैं आप, ढेरों सारी नॉलेज अपने बारे में थोड़ा बताएं हमारे प्यारे लिसनर्स को।
बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, मैं डॉक्टर रोमा अरोरा हूँ और मैं फैजाबाद अयोध्या राजा मोहन गर्ल्स पीजी कॉलेज में संगीत की विभाग अध्यक्ष हूँ, और मैं वहाँ पे 89 दिसंबर से वहाँ पे मैं जॉब में हूँ, और तब से मैं निरंतर संगीत की सेवा और बच्चों को सिखाने का काम कर रही हूँ। और मैं यहाँ आके बहुत खुश हूँ कि आज आपने मुझे ये मौका दिया, पहली चीज। दूसरा कि मैं वैसे इलाहाबाद को बिलोंग करती हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही मैंने संगीत की शिक्षा ग्रहण की है, और मेरे गुरु पंडित रामाश्रय झा जी और डॉक्टर गीता बनर्जी से मैंने संगीत की शिक्षा ली। इसके साथ साथ मुझे वहाँ पे पंडित मलिक, प्रेम कुमार मलिक जी, विद्याधर मिश्र जी और बहुत सारे अच्छे अच्छे गुरुओं से मुझे संगीत सीखने का मौका मिला, और आज मैं उन्हीं के आशीर्वाद से इस संगीत की सेवा में लगी हुई हूँ निरंतर। और आज मुझे यहाँ 34 वर्ष हो चुके हैं इस कॉलेज में ही जॉब करते हुए, और मैं निरंतर बच्चों के साथ सिखाते सिखाते बहुत से नए नए अनुभवों को लेते हुए क्रमानुसार आगे बढ़ते हुए आज मैंने इतने साल बहुत अच्छे से कंप्लीट किए हैं।
मींस आपका सफर बहुत अच्छा रहा अभी तक का।
बिल्कुल बहुत।
और
अच्छा
आपने जैसा कि कहा 34 इयर्स हो गए आपको संगीत के विभाग में रहे, तो काफी कुछ एक्सपीरियंस भी आपको अच्छा वाला रहा होगा, कुछ उतार चढ़ाव भी लाइफ में आए ही होंगे।
बिल्कुल बिल्कुल।
तो उतार के लिए तो नहीं, लेकिन हम ये कहेंगे कि फैमिली सपोर्ट आपको कितना मिला आपको इस सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि जहाँ तक मेरा विचार है और इस समय की जनरेशन को देखते हुए, फैमिलीज को हम देखते हैं कि बच्चों में अगर संगीत को लेकर जिज्ञासा है या सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो उनकी फैमिली उनको उतना सपोर्ट नहीं कर पाती। तो क्या आपकी फैमिली में ऐसा कुछ माहौल था या स्टार्टिंग से ही सपोर्ट मिलता गया?
हाँ, मैं इस मामले में बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ,
लकी है जी।
बहुत लकी हूँ, और मुझे, मैं बहुत छोटी सी थी तब से मेरे पिताजी ने मेरे, जबकि घर में कोई संगीत का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, लेकिन संगीत प्रेमी जरूर थे सभी
जी।
अच्छा संगीत सुनने के शौकीन थे सब। मेरे पिताजी ने मुझ में बचपन में ही शायद ये प्रतिभा देखी होगी, मैं मात्र तीसरी कक्षा में थी शायद, तभी से उन्होंने मेरे पड़ोस के ही किसी संगीत विद्यालय में उन्होंने मेरा नाम लिखा दिया, और मैं छोटी सी जाके अपने गुरु जी की गोद में बैठ करके मैंने अपने खर्च की साधना आरम्भ करी, और मैंने पहला स्वर अपने गुरु जी पंडित राघव मणि मिश्र जी से, प्रतापगढ़ में, मेरा मायका प्रतापगढ़ का है, और मैंने उनसे सीखा, और उसके बाद मेरे पिताजी का ही मुझे बहुत ज़बरदस्त योगदान रहता था, और बहुत वो मुझे प्रेरणा देते रहते थे। मैं छोटी सी थी और बच्चों की तरह चुलबुली बहुत थी, लेकिन फिर भी मेरे पिताजी मेरे साथ बैठते थे कि तुम बेटा रियाज़ करो, हर वक्त मुझे रियाज़ के लिए प्रेरित करते थे, और छोटपन से ही सभी बच्चों के साथ खेलते खेलते मुझे भी इमली और कैथा खाने की इच्छा होती थी, लेकिन मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे इस बात के लिए कहा कि अगर तुमको संगीत सीखना है तो ये छोड़ना होगा। उन्होंने बचपन में ही सुन के रखा होता था कि बच्चे जब संगीत गाने के अगर क्षेत्र में चले जाते हैं तो उनको ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए,
नहीं खानी चाहिए।
लेकिन मैंने उस समय से ही खाना पीना ऐसा सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन फिर भी मुझे खुद भी बहुत इंटरेस्ट आने लगा था संगीत में, और जैसा कि मैं आज बड़े होकर के इतना सुन के और गुरुओं के बारे में सबसे सुनती हूँ, तो उन लोगों का कहना है कि संगीत वही होता है जो खुद को अच्छा लगे, तो शायद मुझे बचपन से ही खुद को अच्छा लगने लग गया था संगीत, तो इसलिए मैं इसमें निरंतर प्रयासरत रही और मैं संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ती चली गई। और मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, मेरे पिताजी ने चूंकि प्रतापगढ़ में तब संगीत था नहीं कॉलेजेस में, तो उन्होंने मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भेजा, और मैंने वहाँ जाके संगीत की शिक्षा आरम्भ करी, और फिर उसके बाद निरंतर मैं आगे को बढ़ती चली गई। फिर मेरे पिताजी का देहांत हो गया था 89 में ही, उसके बाद मेरा विवाह हुआ, और विवाह के बाद मुझे संगीत का, मेरे ससुराल पक्ष में भी संगीत का बहुत ज्यादा तो वो नहीं था, लेकिन उनका सहयोग मुझे मिला और पिताजी के आशीर्वाद से ही मैं 88 से ही जॉब में आ गई। शायद ये मेरी किस्मत अच्छी थी कि विवाह से पहले ही मैंने जॉब शुरू कर दी तो वो कंटिन्यू रहा
जी,
और चूंकि अच्छी गवर्नमेंट जॉब थी तो छोड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं होता
नहीं,
तो बस ये है कि हाँ ये एक चीज मैंने जरूर देखी है कि अगर संगीत की शिक्षा लेते रहे तो बहुत अच्छा है, खूब अच्छा सीखते रहे गुरुओं से तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब जॉब में आ गए तो बहुत सी चीजें जो प्रैक्टिस हम लोगों की अपनी स्टूडेंट लाइफ में अच्छे गुरुओं के सानिध्य में रह करके हम लोगों ने पाई, वो धीरे धीरे मुझे लगा कि शायद थोड़ा कुछ कम हो रहा है, क्योंकि और जिम्मेदारियां बढ़ती गई, शादी हो गई, बच्चे हुए, तो गृहस्थ जीवन में जब आदमी चला जाता है तो थोड़ा सा इसकी तरफ इग्नोरेंस हो जाता है। लेकिन मैंने इसको फिर भी अपने कंटिन्यू रखा और मैं जिम मुझे हर हमेशा अपने पंडित रमाशाह जी गुरु जी की बात याद आती थी कि उन्होंने हमेशा से कहा था कि बेटा तानपुरा आपका वाद्य होता है, इसको कभी खूंटी पे मत टांगना, इसको हमेशा याद रखना। और इसको फिर जब मेरी जॉब लग गई, बच्चे हुए, तो मैंने बल्कि एक दफ़ा अपने गुरुजी से कहा भी, मैंने कहा सर मुझे बड़ा दुख होता है कि मुझे जॉब मिल गई, अच्छी जॉब मिली इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेरा रियाज धीरे धीरे लगता है, शायद घर गृहस्थी में ही मेरा समय ज्यादा लगता है तो कम होता जा रहा। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर आपको ये शर्म है तो इसको बरकरार रखना, और मैंने उनकी बात गांठ बांध ली और उसको वाकई में बरकरार रखा। बच्चे धीरे धीरे बड़े होते, लेकिन मैंने अपना रियाज नहीं छोड़ा।
क्या बात,
थोड़ा थोड़ा समय जरूर दो, चाहे थोड़ा ही समय दो, चाहे तानपुरा ही मिलाने का समय मिला, लेकिन मैंने उसको कंटिन्यू रखा।
तो मतलब गुरु की बात को आपने गांठ मारी,
बिल्कुल बांध ली, और उनके आशीर्वाद से आज मैं इस जगह पे हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं आगे बच्चों से भी यही बच्चों को देती हूँ। रही बात आपने भी पूछा अनुभवों की, तो मैंने बहुत से अनुभव लिए, अच्छे बुरे सब तरह के, लेकिन मैं इनको बुरा इसलिए नहीं कहती कि बुरे अनुभवों को भी जी करके हम समझते हैं कि हमको इसको अच्छा करने के लिए क्या करना
होगा, सीखने का मौका मिलता है,
मुझे इसको अच्छा करने के लिए क्या करना है, तो उसके लिए मैं और नए नए प्रयास, नए नए एक्सपीरियंसेस उसको लेती रही। रही बात बच्चों के साथ कि बच्चे कई बार हर तरह के बच्चे आते हैं स्टूडेंट्स में, कुछ बच्चे होते हैं मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर सुर तो होता है लेकिन दिमाग नहीं होता, समझने की इतनी शक्ति नहीं होती, तो कई तरीके के मेल हमको मिलते हैं ऐसे। तो जिनके जो मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, मतलब कहने का मतलब है कि जो दिमाग से हर बात को, हमने स्वरों का स्थान बताया और बच्चों ने उन स्वरों के स्थान को महसूस किया कि वो जगह क्या है, अगर बच्चा वो महसूस करता है तो दिमाग से भी वो स्वस्थ है,
स्वस्थ है।
तो हमको उसको कैसे पढ़ाना है, जो दिमाग से नहीं अच्छा है भगवान का दिया, उसके पास गला बहुत अच्छा है, तो उसको कैसे टैकल करना है, इसके लिए हमने उस तरीके से उनको सिखाने का प्रयास किया। तो कुल मिलाकर के मैंने यही चाहा कि मेरे जितने बच्चे आए वो सभी एक समवेत स्वरों में और सुरेले स्वरों में वो गाएं और समझें, इसका मैं प्रयास निरंतर करती रही। ये भी बात बहुत अच्छी है कि मैंने बच्चों से बहुत कुछ सीखा
जी।
जैसे जैसे बच्चे आते गए, बच्चों का आज उनका क्या टेम्परामेंट है, आज वो कैसा महसूस करते हैं, उस जनरेशन के बच्चे कैसे ग्रेस्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उनको उस तरह से किया। अगले साल मेरी कई बारी वही नीति अगली बार नहीं काम करती, तो दूसरे तरीके से किया, तो इस तरह से करके मैंने बच्चों से बहुत सीखा और आज तक सीख रही हूँ, आज तक सीख रही हूँ। मैंने हमेशा से ये रहा कि सीखना कभी नहीं बंद होता,
बिल्कुल।
जिस दिन हमने ये सोच लिया कि आज मुझे सब आ गया, शायद मेरा वही फुल स्टॉप हो जाएगा।
एग्जैक्टली, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। अपना हर दिन ऐसा जीना चाहिए कि जैसे कि आज हम सीख रहे हैं और इसको सीखते ही रहें।
बिल्कुल बिल्कुल।
मैम, अभी आपने अपनी फैमिली की भी बात की है, तो फैमिली में आपके बच्चों का भी नाम आया, लेकिन आपने बताया नहीं आपके बच्चे कितने हैं।
हाँ, मेरे बच्चे दो हैं। दोनों बड़े प्यारे बच्चे हैं। मेरी बेटी बड़ी है
जी,
और बेटा छोटा है, उसे 5-5.5 साल का फर्क है
जी। बस पूछना ये था कि क्या आपके गुण आपके बच्चे के अंदर है।
ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं बहुत खुश हूँ, और बहुत, फिर मैं कहती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ। मेरे साथ थोड़ी सी पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी थी कि बच्चे, जब मेरी बेटी हुई तो मेरा जॉब फैजाबाद अयोध्या में था और मेरा ससुराल इलाहाबाद में, फैमिली मेरी इलाहाबाद में थी, बच्चे मेरे साथ, मैं छोटे बच्चों को छोड़ के वहाँ नहीं रह सकती थी, तो मेरे साथ मेरे बच्चे रहे। विषय मेरा इतना अच्छा संगीत था जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। संगीत विषय ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो इसलिए कि एक तो पहली बात तो मैं गर्ल्स कॉलेज में थी, हमारी प्रिंसिपल भी हमारी सारी लेडी स्टाफ था, और उन्होंने इस चीज़ को समझा, एक महिला के दर्द को समझते थे वो लोग, और उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। और मेरे बच्चे छोटे से थे तो मैं क्लास में अगर थ्योरी भी पढ़ानी है बच्चों को, प्रैक्टिकल भी पढ़ाना है, तो मेरे बच्चों ने भी बहुत मुझे सहयोग किया, मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत सहयोग किया। वो ऐसे कि अगर मुझे थ्योरी पढ़ानी है और मेरा बेबी रो रहा है तो मैं उनसे कहती हूँ बेटा थोड़ी देर प्रैक्टिकल कर लो, तो बच्चा सो जाएगा, फिर उसके बाद आप थ्योरी कर लेना। तो इस तरह से करके मैनेज करते करते बड़े धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए। और सबसे अच्छी बात कि मैं क्लास में बच्चों को लेकर के जब सिखाती थी तो वो मैंने आज भी बच्चों के अंदर महसूस किया। बच्चों को राग के नाम तो नहीं मालूम होते, लेकिन बच्चे जब कभी धुन ऐसा दिमाग में उनके बैठ गए कि आज भी अगर उससे रिलेटेड कोई गाना फिल्मी हो, भजन हो, या कुछ भी सुन लेते, मम्मा ये वाला राग है क्या, तो वो वाले राग नहीं बता पाते थे, उस राग के गाने की पहली लाइन बताते थे बच्चे,
दिखाते थे कि
तो मम्मा ये तो वो है। हाँ, तो बच्चों को भी समझ आती थी, ऐसा नहीं है
मतलब म्यूजिक के फील्ड में नहीं है, रोम रोम में है,
बिल्कुल संगीत है। और मेरा बेटा जब छोटा सा था, मेरी गोद में होता था, तो बच्चों को जब मैं क्लास में पढ़ाती थी तो वो ताल देते थे, तो बच्चा पैर हाथ से उस लय पे ही उसी बीट पे वो ताल भी देता था, बहुत छोटा सा होने के बावजूद
बीट
करता था। और आज मेरे बच्चे दोनों बड़े सुरीले हैं, दोनों का पेशा अलग अलग है। बेटी हमारी ICMR में दिल्ली में जॉब कर रही है एज अ रिसर्च साइंटिस्ट, और बेटा अमेजोन पे जॉब कर रहा है, लेकिन दोनों बहुत सुरीले हैं। उनका संगीत के प्रति जो रुचि है वो अच्छे सिलेक्टेड गानों की है, कोई ऐसे टिपिकल आजकल के फिल्मी गानों पे इतना नहीं है, लेकिन जो सेमी क्लासिकल होते हैं या इस टाइप से, उनको ये गाने बहुत पसंद आते हैं और वो गाते भी बहुत सुरीला हैं।
क्या बात है मैम, बहुत अच्छा लगा। खैर, ये तो आपके फैमिली बैकग्राउंड की बातें हो गई, संगीत में क्या उतार चढ़ाव हुआ आपके लाइफ में। अभी आपने एक बात की है संगीत विषय, तो जैसा कि आप प्रोफेसर भी हैं तो आपने बच्चों से काफी कुछ सीखा। आज की जनरेशन के बच्चों में क्या म्यूजिक को लेके कितना सीरियसनेस है, क्या समझते हैं ये लोग, और कुछ NEP के बारे में भी हम बात जानना चाहेंगे आपसे।
मैं पहले NEP की बात के पहले बच्चों के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि संगीत विषय आज थोड़ा सा कहीं कहीं कष्ट होता है संगीत विषय को लेके, कि संगीत को सिर्फ विषय समझा जाने लगा। संगीत को संगीत की तरह से कोई नहीं लेता, विषय के तौर पर लेता है, तो भी स्थितियाँ जो शिक्षा की जो गुणवत्ता है दिन पे दिन गिरती जा रही है, किसी से छुपा नहीं है, सभी जानते हैं। और लेकिन ये बड़ा दुख का कारण है, बहुत दुख होता है इससे। बच्चे संगीत विषय लेते हैं लेकिन सिंसियरिटी नहीं होती। संगीत एक प्रायोगिक विषय है जिसमें प्रैक्टिकल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर उनको प्रैक्टिकल नहीं आएगा तो उनका संगीत किसी काम का नहीं। कल को अगर वो कहीं जॉब के लिए भी जाते हैं तो उनको प्रैक्टिकल उनका पहले देखा जाए। थ्योरेटिकल पार्ट उनका जरूर महत्व रखता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं है तब तक वो संगीत नहीं। तो बच्चे संगीत के लिए प्रैक्टिकल होने के लिए उनको रेगुलर होना पड़ेगा, कॉलेज आना पड़ेगा। तो मैं चूंकि उच्च शिक्षा में हूँ, उच्च शिक्षा में मैंने देखा कि जो परिवारों में लोगों के जो परिवार हैं वो उनके उनमें ही जागरूकता की कमी आती जा रही है। वो बच्चों को विषय के तौर पे संगीत दे देंगे कि चलो मेरिट बन जाएगी, लेकिन मेरिट ऐसे बन जाना उनके लिए तो घातक है ही है, संगीत के लिए भी बड़ा घातक है, बहुत घातक है। और बच्चे रेगुलर नहीं होते प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। टीचर्स पूरे अपने पूरी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, बच्चा रेगुलर नहीं होता। और सबके लिए लगता है कि संगीत एक संगीत विषय में कौन फेल होता है, संगीत में क्या मतलब है, वो तो ऐसे कोई भी तो कोई भी नहीं गा सकता। संगीत शास्त्रीय संगीत हमारा विषय है, हमारा लाइट म्यूजिक कोई संगीत विषय के तौर पे नहीं चल रहा है, हमारा शास्त्रीय संगीत चल रहा है। उसके लिए रागों को समझना, स्वरों को समझना, उनके स्थानों को समझना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए के लोगों के घरों में परिवारों में भी जागरूकता होनी चाहिए। उनको चाहिए कि अगर वो बच्चों को अगर संगीत विषय देते हैं तो उसके लिए उनको प्रैक्टिस करने के लिए जो क्लास में सिखाया जाता है उसकी अगर प्रैक्टिस नहीं होगी, रियाज रेगुलर नहीं होगा, तो वो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए उनको घर में हारमोनियम या इस तरीके की कोई सुविधा बच्चों को देनी चाहिए। प्रत्येक विषय के लिए जब किताबों की बात की जाती है तो संगीत के लिए कम से कम एक इंस्ट्रूमेंट साथ में होना चाहिए बच्चे के पास घर में, क्योंकि 45 मिनट के क्लास में हम बहुत सारे बच्चों को एक साथ सारी शिक्षा नहीं दे सकते। तो उसके लिए आज मैंने क्लास में जो बताया, यदि बच्चा घर में जाकर उसकी प्रैक्टिस नहीं करेगा तो नेक्स्ट डे वो चीज़ नहीं रहेगा। हम गले से किसी बच्चे के स्वरों को निकलवाते हैं, हम किसी इंस्ट्रूमेंट से नहीं निकलवाते। किसी इंस्ट्रूमेंट से निकालना हो तो आज सितार बजा रहा है बच्चा, तो उसको मालूम है कि सा इस पर्दे पर है, रे इस पर्दे पर है, उसको जगह बता देते हैं। लेकिन गले से निकालना, वो दिमाग में यदि स्थिर नहीं होगा बच्चे के, तो वो मुश्किल है अगर वो रियाज नहीं करेगा। जो सीखा घर जाके यदि नहीं गाया या रेगुलर रियाज नहीं करेगा तो मुश्किल। और रही बात रियाज करने की, रियाज के लिए बहुत जरूरी है स्वरों को साधना। सा सदे तो सब सदे है, तो सा ही साधना बहुत जरूरी है। और उसके लिए जो ब्रह्म मुहूर्त में कहा गया है कि रियाज किया जाए, उसके लिए सिर्फ इसीलिए कहा जाता है कि आपके गले की रेंज बनती है। आप मंद्र सप्तक है, मध्य के साथ साथ तार सप्तक में भी ऊपर आराम से जा सकते हैं, वो तब जब आपका रियाज रेगुलर होगा। तो हम लोग आज भी रियाज करते हैं, कई बारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं, कॉलेज में ऐसे काम होते हैं या पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, कई बारी रियाज छूट जाता है। एक दिन का रियाज छूटने का मतलब होता है कि 15 दिन पीछे चले गए। तो हम लोग वापस सा गाने के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम लोगों के कई बारी दो दो महीना एग्जामिनेशन में ड्यूटी लग जाती है, मॉर्निंग भी हम लोग नहीं समय दे पाते हैं, परिवार भी देखना है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग को लगता है शायद वापस फिर उसी जगह पे आ गए। उसके लिए हमको बड़ी मेहनत करनी पड़ती। तो जब आज हम लोग इतना करने के बाद भी हम लोग की स्थिति फिर वही जीरो हो जाती है, तो बच्चों को तो रेगुलर अगर नहीं करेंगे तो वो नहीं आएगा। तो इसके लिए रियाज बहुत जरूरी है। फिर रही बात विषय के तौर पर संगीत को लेना, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं गार्जियंस को भी सोचना होगा कि विषय के साथ साथ अगर उनको प्रेरित करें, क्यों? क्योंकि आजकल अगर किसी भी विषय में, इवन हम और विषयों पे नहीं जाते, हम खाली अगर संगीत की ही बात करते हैं, तो अगर संगीत में ही अगर रियाज करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो बड़े बड़े नए नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। बहुत बड़े बड़े आयाम हैं जिनके क्षेत्रों में संगीत के माध्यम से बच्चा आगे निकल सकता है। और रही बात आज की गवर्नमेंट की बात, उन्होंने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो उन्होंने 2020 से लागू की है राज्य और विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में, वो उन्होंने जो की है उसमें देखिए आपकी तमाम स्किल मैनेजमेंट को उन्होंने ज्यादा वो दिया है। तो ऐसी स्थिति में अगर संगीत को ही यदि ले लेंगे, मैंने तो ये बहुत अच्छी बात एक NEP के अंतर्गत ये भी देखी कि स्किल तो अब तो कुछ भी हो, जिस चीज में आप परफेक्ट हो गए आपको उसी में रोजगार मिलता है। तो अगर बशर्ते अगर उसमें सिंसियर है तो हम खाली ये कह दें कि स्किल अब हो गया, कौशल आ जाएगा तो आप सब कुछ कर सकेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी भी चीज के लिए आपको अपना समर्पण, आपको त्याग करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी चीज के पीछे पड़ जाएंगे तभी आप उस चीज को पा सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप संगीत के माध्यम से अगर करना चाहें तो बहुत से, जैसे आज आप श्वेता जी जिस जगह पे हैं, इस जगह पे और बच्चे भी आ सकते हैं। तो ये नहीं मैं कह रही हूँ कि गाने वाले ही आ सकते हैं, संगीत से बहुत पर्सनालिटी डेवलप भी होती है। और संगीत से आपकी मेमोरी बढ़ेगी, आपके तमाम तरीके, आप में कॉन्फिडेंस आता है। आप देखिए म्यूजिक थेरेपी चल पड़ी है, बहुत सी चीजें हैं, मतलब इतने क्षेत्र हैं संगीत के माध्यम से, इतने अवसर हैं, इतने रोजगार हैं कि ये जरूरी नहीं है कि आप संगीत से आपने MA किया, PhD किया और आप कहीं उच्च शिक्षा विभाग में या कहीं आप किसी इसमें आ गए, आप टीचिंग में ही आ गए। जरूरी नहीं है, टीचिंग के साथ साथ बहुत से ऐसे भी आयाम है। आप तमाम देखिए टैलेंट शो चल पड़े हैं कितने जगह, अभी देखिए आप अयोध्या में मंदिर का निर्माण हुआ है, कितने स्टेज बने, कितने मंच बने। मैं कहती हूँ कि मैंने अभी देखा कि हमारी सरकार इस मामले में बड़ी सिंसियर है, बहुत ज्यादा उसके पीछे पड़ गई है कि जिसके पास जो टैलेंट है वो आकर के प्रस्तुत करे। तो जो टैलेंट आ रहा है उसमें संगीत का तो बहुत जबरदस्त, चारों तरफ सिर्फ संगीत ही संगीत। मैं अयोध्या से हूँ, मैं अभी कल ही मंदिर के दर्शन पुनः करने के लिए गई और देखा सब तरफ सिर्फ संगीत। इतना संगीत कि चाहे वो भक्ति संगीत हो, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल संगीत हो, कुछ भी हो, सिर्फ संगीत ही संगीत है। तो संगीत से तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बहुत से अवसर मिलते हैं। तो इसलिए इसलिए संगीत को तो आगे बढ़ाना ही चाहिए। हमको लगता है हर घर में संगीत होना बहुत जरूरी है। और संगीत आपको मन से भी शांत करता है, आपका स्ट्रेस दूर करता है, तमाम तरीके की आपको किसी तरीके की कोई परेशानी है, संगीत से देखिए कितनी जल्दी छट में दूर जाती। कहना आसान ही नहीं है ये, अगर आजमा के किया जाए तो ये जरूर इससे उसको सफलता मिलती है, सभी जानते हैं।
और करने वाले करते भी, करते बस एहसास नहीं होता,
बिल्कुल एहसास नहीं होता। मैं कहती हूँ कि मैं किचन में भी अभी काम करते रहूंगी, बच्चों को मैं बताती हूँ। आपको मैं एक बड़ी अच्छी बात बताना चाहूंगी, शेयर करना चाहूंगी आपसे। क्योंकि हमारे क्लास में कई बार बच्चे होते हैं, बच्चों के पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते, हर तरह के परिवार में होते हैं, कई दिक्कतें होती हैं, नहीं ले पाते बच्चे इंस्ट्रूमेंट। हम कहते हैं कि हमने भी, हमारे पास भी सब इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन काम भी करना है तो हर वक्त इंस्ट्रूमेंट थोड़ी बचता रहेगा, काम करते रहे। मैं वॉशिंग मशीन भी चलाती थी, उसकी एक टेम्पररी एक आवाज होती, घूमती, हम उसी को खर्च मान के उसी रियाज शुरू कर देते हैं। आप किचन में एग्जॉस्ट फैन चल रहा है, उसकी एक गूंज होती, एक सी गूंज चलती, उसी को आप सा मान लीजिए, उसी के साथ आप रियाज करिए। तो रियाज के लिए तो आप ये नहीं कह सकते कि हमको हारमोनियम खोल के बैठना है,
तानपुरा मिल जाता है,
बेस हमको कहीं भी मिल जाता है। और अगर आप समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, सुन सकते हैं
जी,
तो आप उसके माध्यम से भी अपना रियाज कभी भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई बहाने की जरूरत नहीं है कि आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो इसलिए आप नहीं कर सकते।
जी, बिल्कुल।
और आपने एनईपी की बात करी, तो एनईपी के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि मैं अवध विश्वविद्यालय में जब से ये लागू हुआ है तब से मैं उसकी कन्वीनर भी रही
जी।
और मैं तमाम तरीके की मीटिंग्स वगैरह भी अटेंड करती रही, देखती रही। अच्छा है, एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है अच्छी है, उद्देश्य बहुत अच्छा है
जी।
लेकिन उद्देश्य साकार होने में, पूरा होने में मुझे लगता है अभी समय
लगेगा,
बहुत समय लगेगा, क्योंकि बहुत सी चीजों के, जिसको हम कहें, अवधारणाएं क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं
जी।
अभी यूनिवर्सिटी में भी मैंने देखा, मुझे थोड़ा सा कहने में संकोच जरूर कर रही हूँ, लेकिन मैं कहना भी चाह रही हूँ कि यूनिवर्सिटी में बहुत सी चीजें हैं जो कि उनको खुद को भी अभी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। कई बारी जो नियम उन्होंने एक बार बनाए वो अगले ही दो महीने में उन्होंने बदल दिए, उसकी सूचना यदि सबको नहीं मिलेगी तो हम बच्चों को नहीं दे पाएंगे। हम खुद उससे क्लियर हों, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो, तब हम बच्चों को सूचना दें और बच्चों को तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसमें मुझे लगता है अभी समय लगेगा। अभी तो हमारे यूनिवर्सिटी के हिसाब से फिफ्थ सेमेस्टर चल रहा है, नेक्स्ट थर्ड जो होगा वो थर्ड ईयर कंप्लीट होगा, सिक्स सेमेस्टर चलेगा। लेकिन जब ये मुझे लगता है कि पूरी निरंतरता जब ले लेगा, पूरा जब ले लेगा, तब शायद ये कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन बहुत सी चीजें शुरू करने में और पूरी होने में समय तो लगता है,
बिल्कुल
लगता। तो इसलिए वो मैं बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगी उसके लिए, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा रही बात उसकी कि ये पहले बरसों से हम लोगों के यहाँ ये ईयरली एग्जाम्स होते थे, वार्षिक परीक्षाएं होती थी। ये अचानक से जब सेमेस्टर सिस्टम चल पड़ा है, ये विश्वविद्यालय तो हमेशा अपने तरफ से सेमेस्टर्स लिए करते थे, लेकिन महाविद्यालयों में सेमेस्टर सिस्टम नहीं था। तो इसकी जानकारी अभी न गार्जियंस को हो रही है, न बच्चों को हो रही है। बच्चों को ये चीजें क्लियर ही नहीं हो रही हैं कि ये उनके हिसाब से एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, तब मुझे कॉलेज जाना चाहिए।
जी, जी,
लेकिन हमारे यहाँ चूंकि ये बड़ी अव्यवस्था अभी चल रही है, अभी सब चीजें क्लियर हो नहीं पाई, सिस्टमेटिक वे में अभी वो बन नहीं पाया है
जी।
तो इस कारण परीक्षा फल में देर होती है। तो जब परीक्षा फल नहीं निकलता, बच्चे कॉलेज नहीं आते। अब आपने अटेंडेंस भी उसकी 75% कर दी कि अटेंडेंस भी होना है। अब बच्चे को मालूम है कि हमारा रिजल्ट नहीं आया तो हम कैसे कॉलेज जाएं।
हाँ जी, तो पेरेंट्स भी यही बोलते हैं, बड़ा कंफ्यूजन है, पहले आने तो दो रिजल्ट।
तो ये चीजें घर घर तक अभी एनईपी के सारे नियम नहीं पहुंचे हैं। पहली बात, बच्चे ही नहीं आते हैं कॉलेज, तो इस करके बच्चों को ही सूचना नहीं होती। और कई बार बच्चे आते हैं तो सूचनाएं गलत दे पाते हैं, क्योंकि हम टीचर्स को ही सूचनाएं क्लियर
नहीं होती हैं।
तो ये इसमें मुझे लगता है अभी समय लगेगा। और ये अगर जो देश लेके चले हैं वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये सफल होता है तो बहुत ऊंचाई पे जाएगा, और नहीं होता है तो बड़ा, ये स्थिति कब तक बनी रहेगी, हम सब भी बहुत परेशान हैं। बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ ना हो, हम लोग ये भी चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं विश्वविद्यालय से और राज्य स्तर के जितने भी उच्च शिक्षा विभाग के हैं उन सबसे यही गुजारिश करूंगी कि इन चीजों को जल्दी से जल्दी क्लियर करें, सभी अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सारे दिक्कतें आ रही हैं, इन सब चीजों को एक साथ क्लियर करके उनको परमानेंट कर दें, तो ही तो होगा। वरना आज ये नियम, कल वो नियम, परसों दूसरा नियम, तो इससे नियम यदि बदलते रहेंगे तो सब भ्रमित रहेंगे। बिल्कुल
जी। चलिए मैम, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप आए और कुछ गुनगुनाए ना, ऐसा कहाँ हो सकता है। तो मैं बस छोटी सी गुजारिश करूंगी कि बस चंद मिनट्स में आप कुछ भी, जो आपका फेवरेट रहा हो आज तक।
नहीं, फेवरेट तो बहुत से गाने होते हैं, बहुत
अच्छे
अच्छे होते हैं।
नहीं पाएंगे जी, बिल्कुल।
लेकिन रही बात है, चूंकि मैं अयोध्या से हूँ, अभी हाल ही में वहाँ राम मंदिर की स्थापना हुई है, और मैं राम जी आए हैं उनके मंगल गान में मैं एक पंक्ति गाने चाहूंगी। तो मैं श्री राम जी के अयोध्या आने पर मैं एक मंगल गीत प्रस्तुत कर रही हूँ।
गावो रे मंगल चार की रघुवर रघुवर ब्याह के आए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, लायन दुलहिन चार के रघुवर ब्याह के आए। लायन दुलहिन चार दशरथ सुत ब्याह के आए। गावोरी मंगल चार के रघुवर ब्याह के आए। सब सखिया मिल मंगल गावे, सब सखिया मिल मंगल गावे। देवता करे जय जयकार कि रघुवर ब्याह के आए। देवता करे जय जयकार दशरथ सुत ब्याह के आए। गावोरी मंगल चार कि रघुवर ब्याह के आए। दशरथ सुत ब्याह के आए, रघुवर ब्याह के आए।
वाह मैम, क्या बात है, रघुवर ब्याह के आए, क्या बोल थे, बहुत ही खूबसूरत। मैं तो डूब गई थी और बड़ी मुश्किल से निकल पाई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और बहुत अच्छे बोल थे, धुन बहुत अच्छी, किसी राग से बधित भी होगा ये?
ये है सब लोकगीत संबंधित।
अच्छा,
है
अच्छा, सेमी क्लासिकल है। बहुत अच्छा लगा मैम।
ट्रेडिशनल सॉन्ग है, उसी की धुन पे हम लोगों ने थोड़ा सा ये द्वार चार पे गाया जाता
हाँ जी,
है
हाँ
उसको हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया है,
कंपोज किया है जी। बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आप आई, बहुत अच्छा लगा, जाने देने का मन नहीं है, लेकिन बस यही है कि टाइम का तगाजा थोड़ा है कि आपको भी जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आगे भी चाहेंगे जब भी आपको समय मिले प्लीज हमारे ज्ञानश्री रेडियो में विजिट करें आप।
बिल्कुल बिल्कुल,
थैंक यू मैम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भी, और चाहेंगे जितने भी लिसनर हमारे सुन रहे होंगे आपको काफी कुछ सीखा होगा, और प्लीज ऐसे ही सीखते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। आप सभी को बता दें कि आज हमारे पास खास मेहमान हमारे स्टूडियो में हमारे साथ थी डॉक्टर रोमा अरोरा मैम, जो कि अयोध्या से आई हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच।
तो दोस्तों सुनते रहिए ज्ञानश्री रेडियो 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।